नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रगति को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले भारतीय युवा नवोन्मेषकों की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त किया। मौसम विभाग ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के कई जिलों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। अमरीका ने बढ़ते तनाव के कारण पश्चिम एशिया से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाया। और FIH हॉकी प्रो लीग में भारत आज शाम नीदरलैंड्स में अर्जेंटीना से मुकाबला करेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। यह हादसा मेघानी नगर के गुजसैल के पास हुआ है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता अपर्णा खुंड से, जो गुजरात में हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी अपर्णा, क्या ताजा स्थिति है, जान माल को क्या नुकसान हुआ है?
जी, जो मेघानी नगर विस्तार में ये घटना बनी है, एक जो विमान क्रैश हुआ है उसमें जो भी घायल लोग हैं उनको अभी सिविल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और राहत और बचाव कामगिरी जो है वो जारी है। अभी तक ये पता नहीं चला है किस वजह से ये हादसा हुआ है, पर फायर की और पुलिस की जो टीमें हैं उन्होंने जांच जो है शुरू कर दी है अपनी। और अभी फिलहाल तो है कि काफी जनमान का नुकसान होने की संभावना है, बट उसका जो है उसके डिटेल्स अभी तक हमारे पास नहीं आई है।
जी अपर्णा, अब जैसे जैसे हमें पता चलेगा अपडेट, आप हमसे जुड़ेगा और हमें ताज़ा स्थिति के बारे में जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद अपर्णा इस जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने और तकनीक को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत के युवा नवोन्मेषकों की सराहना की है। एक रिपोर्ट।
डिजिटल इंडिया ने युवाओं को नवाचार का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है, जिससे पिछले 11 वर्ष में भारत की स्थिति वैश्विक प्रौद्योगिकी में महाशक्ति के रूप में मजबूत हुई है। सोशल मीडिया एक्सपर्ट MyGOV इंडिया की पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी की शक्ति का लाभ उठाने से लोगों को अनगिनत लाभ हुए हैं। उन्होंने कहा कि सेवाओं तक पहुँच और पारदर्शिता को काफी बढ़ावा मिला है। दूर दराज के गाँव में इंटरनेट पहुँच से लेकर वास्तविक समय का डिजिटल भुगतान तक हो रहा है। डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष समावेशी विकास, नवाचार और भारत की एक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरने की कहानी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
भारत ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक तक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला लेकर आया है। आज हम डिजिटल इंडिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कैसे प्रौद्योगिकी शासन, समावेशन और सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण कड़ी बन गई है।
पिछले दशक में सरकार ने समावेशी विकास और जीवन को आसान बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग किया है। डिजिटल भुगतान को व्यापक रूप से अपनाना एक उल्लेखनीय सफलता रही है। इस साल अप्रैल में ही लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के 1,867 करोड़ से अधिक UPI लेनदेन दर्ज किए गए। संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस सहित 7 देशों में UPI भारत को डिजिटल भुगतान में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित कर रहा है। भारत के डिजिटल परिवर्तनकारी युग में डेटा लागत में 96% की कटौती के साथ ही 99.6% जिलों में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। इसके अलावा भारत नेट योजना के तहत अब 2,18,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध है। पिछले 11 वर्ष में भारत के इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार में 285% की वृद्धि हुई है। वहीं भाषिणी जैसी पहल भाषाई विभाजन को पाट रही है, जिससे 22 भारतीय भाषाओं में AI संचालित अनुवाद किए जा रहे हैं। आधार प्रमाण करण द्वारा संचालित प्रणाली ने लाखों फर्जी लाभार्थियों को हटाया है, पारदर्शिता सुनिश्चित की है, सार्वजनिक धन की बचत की है और समय पर कल्याणकारी योजनाओं का वितरण किया है। प्रौद्योगिकी न केवल भारत को जोड़ रही है बल्कि भारत में भुगतान करने और लाभ उठाने के तरीके को भी बदल रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कनकलता।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इस अभियान के समापन के अवसर पर गुजरात के बारडोली में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने भारत के कृषि पुनर्जागरण के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी रोडमैप को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के बारे में बताते हुए श्री चौहान ने व्यापक विकसित भारत पहल के अंतर्गत विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत जमीनी स्तर की खेती के तरीकों को बदलने और वैज्ञानिक अनुसंधान के एकीकरण पर जोर दिया।
कृषि वैज्ञानिक, किसान, राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम करेगी। एक राष्ट्र, एक कृषि और एक टीम की भावना से ये वैज्ञानिक और कृषि विभाग किसानों के साथ लगातार खड़ा रहेगा, संपर्क करेगा और खेती के दिशा को और बदलने की कोशिश करेगा ताकि हम देश के अन्न के भंडार भी भर सकें। और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि दुनिया का फूड बास्केट अगर कल कोई बनेगा तो भारत बनेगा, हम अपनी जनता का भी पेट भरेंगे और दुनिया का पेट भरने का काम भी भारत करेगा।
केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने भारत और विश्व स्तर पर योग को एक परिवर्तनकारी स्वास्थ्य अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने में मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में आयुष मंत्री ने पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात की, जिसमें वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय के निर्माण से लेकर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की भारत की महत्वपूर्ण पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की प्राचीन विरासत विश्व मंच पर आ गई है।
हमारे प्रधानमंत्री जी के में निर्देश थे कि ये 11वां जागतिक योग दिन पूरे दुनिया में और विशेषकर हमारे भारत देश में भी बड़े पैमाने पर और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें शामिल करके हमको एक बड़ा उत्साह, योग का उत्सव हमें यहाँ पर मनाना है।
ये विशेष भेंटवार्ता आज रात 9:30 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और पूरे आकाशवाणी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये विशेष श्रृंखला विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 वर्ष का हिस्सा है। ये साक्षात्कार हमारे YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को सुबह 6:30 से 7:40 तक देश भर में 1,00,000 से अधिक योग कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए जाएंगे। इसमें सामान्य योगाभ्यास किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। नई दिल्ली में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे।
पूरे राज्य में मजबूत और दीर्घकालीन योग संस्कृति बनाने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश सरकार ने योग आंध्रा अभियान शुरू किया है, जो एक सर्वथा अभूतपूर्व प्रयास है। इस प्रयास का उद्देश्य 10,00,000 नियमित योग अभ्यासियों का एक समूह बनाना है, जो असाधारण रूप से महत्वाकांक्षी हो।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कहा कि मात्र एक दशक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में 90 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वर्ष 2014 में 7,000 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण हुआ। पिछले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 6,83,000 करोड़ हो गया। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाए जाने संबंधी तमाम दावे निराधार और भ्रामक हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार UPI के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार MDR शुल्क को 2020 में ही समाप्त कर चुकी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली के राजघाट पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया। इसमें अल्पसंख्यक समुदायों, खासकर कारीगरों और पारंपरिक शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को दिखाया गया है। श्री रिजिजू ने बताया कि गांव के श्रमिकों में बहुत प्रतिभा है और उनकी हस्तनिर्मित कला को बाजार तक पहुंचाने के लिए मंच तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों के उत्पाद अन्य राज्यों तक पहुंचाने में भी मदद मिलेगी।
लोक संवर्धन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे गांव में जो कारीगर होते हैं, जो हुनर है, उनका सामान, उनका बनाया हुआ प्रोडक्ट्स मार्केट में लेकर आने के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। हमारा देश के कोने कोने में अलग अलग बहुत विशेष चीजें बनाते हैं, तो वो आदान प्रदान भी होगा।
अभी मिली जानकारी के अनुसार अग्निशमन और पुलिस की टीमें गुजरात में विमान हादसा स्थल पर पहुंच चुकी हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बचाव और राहत कार्यों के निर्बाध संचालन के लिए दुर्घटना स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। कुछ घायलों को इलाज के लिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं गुजरात में मौजूद हमारी संवाददाता अपर्णा खुंड से। जी अपर्णा, एक बार फिर आपके साथ जुड़ गए हैं। ताजा स्थिति के बारे में जानकारी के लिए क्या और अपडेट है लेटेस्ट?
जी अभी ये पता चला है कि अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, जिसमें तकरीबन 200 से ज्यादा प्रवासी थे, और उसमें से जो भी घायल है, जैसे मैंने बताया, उनको सिविल हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। और रास्ते जो है इस घटना स्थल को जुड़ते हुए, वो सारे रास्ते अभी यातायात के लिए बंद कर दिए हैं। और जैसे ही ये हादसे की खबर मिली है, जैसे भूपेंद्र पटेल जो हमारे मुख्यमंत्री है, वो भी सूरत से अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, और ये बचाव कामगिरी जो लगातार जारी है, और अभी बीएसएफ भी उसमें जुड़ी है। और जैसे हमने बात की कि जानमाल नुकसान भी हुआ है, आजू बाजू की जो बिल्डिंग्स है और जो पार्किंग में जो व्हीकल्स थी उनको भी नुकसान पहुंचा गया है, नुकसान हुआ है। हालांकि अभी हम कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है, बट ये राहत जो कामगिरी है, बचाव की जो कामगिरी है, वो लगातार जारी है।
जी धन्यवाद अपर्णा इस जानकारी के लिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ते रहेंगे। अमरीका ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के कारण पश्चिम एशिया के कई स्थानों से गैर आवश्यक कर्मियों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि ये एक खतरनाक स्थान हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा अमरीकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में इस महीने की 14 तारीख तक भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी आज लू की स्थिति रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा कि अगले 2 दिन तक इन जगहों पर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके बाद स्थिति में सुधार होने की संभावना है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एनसीआर दिल्ली के लिए हमने हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट दे रखा है। टेम्परेचर वहाँ 47 डिग्री तक पहुंचे हुए हैं, स्पेसिफिकली साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, जहाँ नॉर्थ राजस्थान वहाँ इवन 48 तक टेम्परेचर हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने जहाँ रेड अलर्ट कर रखा है, और ये कंडीशन 12 और 13 को और 14 और 15 को थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने का पॉसिबिलिटी है।
मौसम विभाग ने कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर और दक्षिण कन्नड़, उडुपी, शिवमोग्गा और चिकमगलुरु तथा कोडागु जिलों में मूसलाधार वर्षा के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि धारवाड़, हावेरी, गडक, विजयपुरा और विजयनगर, बागलकोट, कोपल्ला और दावणगेरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज व्यापक वर्षा की संभावना है। हॉकी प्रो लीग में आज शाम भारतीय पुरुष टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। नीदरलैंड्स में यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। भारत फिलहाल 11 मैचों से 15 अंक हासिल कर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। इससे पहले कल एक करीबी मुकाबले में भारत अर्जेंटीना से 3-4 से हार गया। लंदन के लॉर्ड्स में चल रहे विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल के आज दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी 4 विकेट पर 43 रन से आगे खेलेगा। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण इंद्रप्रस्थ और अन्य चैनलों पर दोपहर 2:55 से सुना जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 वर्षों में प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्रगति को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले भारतीय युवा नवोन्मेषकों की सराहना की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, विकसित कृषि संकल्प अभियान ने वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर पर खेती के बीच के अंतर को सफलतापूर्वक समाप्त किया। मौसम विभाग ने दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। कर्नाटक के कई जिलों में भी आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। अमरीका ने बढ़ते तनाव के कारण पश्चिम एशिया से गैर जरूरी कर्मचारियों को वापस बुलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।